फिर नेक्स्ट वीक मतलब 2022-23 जो है उसका पार्ट बी चलेगा सेक्शन ए का, फिर नेक्स्ट वीक उसके सेक्शन बी का, इस तरह से एक महीने में चारों सेक्शन के एक सप्ताह का ऑफर मिल जाता है। जो लोग वहाँ प्रेजेंटेशन देते हैं मतलब स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उन्हीं में से हाउस लीडर भी है उनकी ड्यूटी लगाई है, जिसका जिसका प्रेजेंटेशन हुआ उन्होंने लगे ने क्या उसको व्हाट्सएप ग्रुप में बाई नेम शेयर कर, व्हाट्सएप ग्रुप में वाला रिकॉर्ड आता है किस बच्चे ने कब क्या प्रेजेंटेशन दिया। और जो हमारी इस तरह से मंथली या वीकली एक्टिविटीज होगी जैसे स्टोरी टेलिंग वाला हुआ, जैसे पहले योग वाला हुआ, तो योग का हमने वन मंथ का कराया था, हमारे लिए टाइमिंग से अलग हो गई, हम सुबह 6 बजे बुलाते थे और 7-7:30 बजे तक कोई योग चलता, मैं डेली कर रहा था, तो कुछ बच्चे बहुत दूर से भी आते हैं उनके लिए आना चलना नहीं, और दिन भर में योग करने लायक स्थितियाँ नहीं रहती, इसलिए हमने उसमें हाई मार्क्स कंपल्सरी कर दिया था, ज़्यादा मार्क्स भी नहीं रखा, क्योंकि जो बच्चे दूर से आ रहे हैं उनका बहुत लॉस हो, लेकिन वो आना चाहे, तो इस उद्देश्य से मैंने योग में पार्टिसिपेशन पे 5 मार्क्स कर दिया था, जो रेगुलरली आएगा उसको 5 मार्क्स उसके मिलेंगे, जो नहीं पार्टिसिपेट करेगा वो 5 मार्क्स उसके कट जाएंगे, तो इस हिसाब से थोड़ा सा आदमी पेन लेकर भी पार्टिसिपेट करता है। कल स्टोरी टेलिंग वालों में कुछ बच्चों ने नहीं लिखा था, तो कल मैंने फिर डिसाइड किया कि इस बार भी 5 मार्क्स लेंगे, यदि आप नहीं पार्टिसिपेट करते हो तो 5 नंबर आपके कटेंगे, ऐसी भी स्टोरी लिखो लिखो।
उसमें टोटल 6 तरह के प्रोजेक्टर से वहाँ पेश किए जाते हैं,
ये रूटीन में जो चलता है कट जाए रूटीन में चलता है, एक तो करंट अफेयर होता है, ये जीके पे होता है, करंट अफेयर को न्यूज पे भी होता है, अगर समय एक हाउस में 15-16 क्वेश्चन और न्यूज आज का होता है, आज के और यदि जो आज एक बच्चे ने वो नया उसका अपना सोच था जो हमारे सब्जेक्ट पे उसने क्वेश्चन आंसर किया, मैंने उसको कल के लिए कह दिया कि इसको पढ़ाइए अच्छी बात है, इसी माने आपके अपने सिलेबस की भी तैयारी हो जाएगी, तो ये है। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग है वो बिना देखे बिना पढ़े स्टोरी टेलिंग सुनाएंगे, और बच्चे प्राय नहीं सुनाते हैं, ये तो आज शायद तैयारी कम थी इसलिए उसने पूरा नहीं सुनाई, अक्सर नहीं कहानी सुनाते हैं, एक पोएम उसमें मेरा जोर रहता है कि याद करके सुनाओ, लेकिन बच्चे प्राय याद नहीं कर पाते हैं, पोएम फिलहाल पोएम है, और ये पीटी ही तो है, पीटी है और समूह गान है, प्रेयर और अटेंडेंट ये राष्ट्र गान तो है, हाँ थॉट ऑफ द डे है, कोई प्रेरक प्रसंग क्यों सुना सकता है, ये अदर देन स्टोरी टेलिंग है, किसी कोई अपना किसी महापुरुष के जीवन के बारे में कोई चीज, अब ये बच्चों के इंटरेस्ट पर डेवलप करता है वो क्या क्या सुना सकते हैं, लेकिन ये सारी विविधता है ना हो गई और आधे घंटे वाला लगभग हो जाता है, और बच्चों के लिए एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है किसके नाते वो जैसे करंट अफेयर्स और जी के और न्यूज ये सबसे एक तरह से वो भी लाभान्वित होते हैं, और ये लगभग फुल ईयर एक्टिविटी है ये, और विदाउट एनी आवर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, मतलब इधर रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करना पड़ता, वो बच्चे ही अपना जो पार्टिसिपेट किए उनका नाम शेयर व्हाट्सएप में कर देंगे, हम अब मार्किंग टाइम उसमें ध्यान देते हैं कि जो 50 मार्क्स हमने जो क्योंकि एक्टिविटीज पर रखा है इस उसके अलावा जो हमने मंथ में कोई विभिन्न प्रतियोगिताएँ कराते हैं उसके हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो और इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं उसमें हम प्राइज भी देते हैं, एक हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट का फंड है, स्पोर्ट्स का फंड है, उसे हम पुरस्कार भी बांटते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राय इंडिविजुअल वाले में देते हैं, ग्रुप वाले में सर्टिफिकेट देते हैं, क्योंकि ग्रुप वाले को लंबा हो जाता है तो वहाँ प्राइज नहीं देते वहाँ सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन का इवेंट होता है उसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज भी देते हैं, और सर्टिफिकेट तो लगभग समझे होते हैं उसको, हमारे यहाँ डॉक्टर गोविंद पुरी जी हैं हिंदी प्रवक्ता वो देखते हैं, इस तरह से हम बच्चों का क्योरेटिव एक्टिविटी के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और उस मार्क्स तो सबके लिए है, जो 50 अंक है हमारे, जो 100 नंबर इंटरनशिप हमारे अपने के होते हैं, तो सब्जेक्ट से अलग होते हैं, वो उन 100 अंकों में 50 नंबर अटेंडेंस बेस्ड होते हैं, 50 नंबर कोकरिकुलर एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। पार्टिसिपेशन से धीरे धीरे टीचर के मन में आइडिया बन जाता है कि हाँ यार ये लड़का है लड़का पार्टिसिपेट तो करता है, तो जो पार्टिसिपेट के लिए 80% इवेंट में भी जो पार्टिसिपेट कर दिया उसको काउंटर कर दिया, और यदि कम होता है तो लोवेस्ट वाले को भी 35 देते हैं, क्योंकि वो सुन भी रहा है देख भी रहा है तो कुछ तो उसका है नहीं, तो 35 to 15 मार्क्स। लेकिन ये 15 मार्क्स का डिफरेंस यदि 4 सेमेस्टर में जोड़ दें तो ह्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों प्रयास होता है बच्चों का, मतलब ये क्वालिटी बेस्ड असेसमेंट हो और वो अच्छे लर्निंग में उनका इंटरेस्ट बेहतर, अच्छे कामों में उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। इसे कल कुछ ने स्क्रीनता दिखी मुझे स्टोरी, बच्चे नहीं लिखे थे तो किस तरह काम होगा तुम कह नहीं, ये मैंने स्टोरी राइटिंग का कंपटीशन पूरे डिस्ट्रिक्ट के टीचर से इनवाइट किया, लेकिन मात्र 3-4 स्टोरी रहे, मुझे लगा कि ये टीचर्स को बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाएंगे, मैं 1 महीने का और टाइम बढ़ा देंगे फिर से बढ़ाऊँगा, ये मेरी ही अपनी सोच से मैंने ये निकाला है, ये प्रतियोगिता मैंने खुद अपने स्तर पर अप्लाई किया है, उसका मेरा जो प्लान ये है कि कुछ रोचक कहानियां ऐसी विकसित की जाए जो कुछ संज्ञाओं पर आधारित हो और उन संज्ञाओं को हम चित्रों के माध्यम से दिखा सकें, वो यदि स्टोरीज हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएंगी तो ये बात तो अभी मैं जहाँ भी टीचर्स मिलते हैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि प्रेयर असेंबली पे एक कहानी सुनाइए बच्चों और 5 बच्चों से वो कहानी सुनिए, हर क्लास के एक ही बच्चे से, मतलब फिफ्थ से भी फोर्थ से भी वन से, और जिस बच्चे से सुन लीजिए उसका दोबारा नंबर तब तक नहीं आएगा जब तक क्लास के सारे बच्चे नहीं सुने, उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एक इंटरेस्ट बढ़ता है, प्रेयर असेंबली मैंने ज्वाइन कर लिया। अब किसी का नेक्स्ट स्टेप है कि जो स्टोरी आपने सुनाई उसी स्टोरी को ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए, फिर पढ़ के सुनाइए, इतना होने के बाद 5 बच्चों से सुन लीजिए, तब यदि लिंक क्लास ही आप कर रहे हैं तो क्लास के ही 5 बच्चों से सुनिए, उसमें 5 बच्चे वो होंगे, पहला बच्चा तो तेज होगा, बीच के 2 बच्चे मध्यम स्तर के होंगे, वो अंतिम जो 2 बच्चे होंगे वो क्लास के वो बच्चे होंगे जो कम आते हैं या जो जिनकी लर्निंग आपको लगती है कि ये कम सीखते हैं धीरे धीरे से सीख रहे हैं, उन बच्चों से जरूर सुनना, तो वो बच्चा जो सुना लेगा, और इसको मैं जब भी सुपरविजन में जाता हूँ तो मैं इस चीज को एश्योर करता हूँ, मतलब 1-2 ऐसे बच्चे से जिसको कि उन लोगों को लगता है कि ये नहीं सुना पाएगा, मैं उससे भी कहानी सुनवाता हूँ, देखिए जिसको आप कह रहे थे कि ये नहीं सुना पाएगा, मैंने 5 मिनट में एश्योर किया कि ये बच्चा भी सुना, लेकिन पे वो विद्यालय के बाबतपुर के पास बाबतपुर वाले टर्न पे सगुना नहीं तो इधर ये जो हाईवे से जाएंगे और बाबतपुर की तरफ मुड़ेंगे
आगे मुड़े तरफ
से नहीं नहीं हम जौनपुर वाले जाने के रास्ते पे जौनपुर वाराणसी
तो जौनपुर से सगुना पड़ता है
वो सगुना है
हाँ जो
मुड़ता कार्डर पे
हाँ जैसे मुड़ता टर्न लेते हैं तो पड़ता उसके बाद एयरपोर्ट पड़ता है
अच्छा आप वही दाइने उसी विद्यालय के मैं क्लास में गया तो एक फोर्थ थर्ड या फोर्थ क्लास थी हिंदी की क्लास चल रही थी बच्चे एक वो पढ़े हुए थे उसमें शेर और लोमड़ी की कहानी का अभ्यास था एक्सरसाइज में शेर लोमड़ी की आधी कहानी थी आधी कहानी बच्चे को आगे पूरी करनी तो मैंने जिस बच्चे के सामने खुली हुई थी वो को मैंने उससे कहा कि इस कहानी को सुना दो चलो आप सुना जो सुना रहा था तो और बच्चों से कहा कि ये बच्चा जो कहानी सुना रहा है आप सभी को सुनाना है मैं सबसे सुनूंगा ये कहानी उस बच्चे ने तेज बच्चा था उसने पूरी कहानी को रटे हुए शब्दों में सुना फिर हमने कहा तो और कौन सुना लेगा फिर एक तेज बच्चे ने हाथ उठाया हमने कहा चलो आप जब ये 2 बच्चे कहानी सुना रहे तो 1-2 बच्चे थोड़ा चंचल थे वो कुछ अपने सामानों के साथ खेल रहे थे टीचर से वो जिन सामानों के साथ खेल रहे थे मतलब डिस्टर्ब थे वो उन सवालों को ले लिया जिससे कि कहानी सुने तो थोड़ा बार इन्वाइट फिर किए लेकिन टीचर ने ले लिया। उसके बाद मैंने उन्हीं दो बच्चों को बुलाया जो बच्चे वो खेल में इन्वॉल्व थे, मैंने कहा आप आओ। उन दोनों बच्चों ने जो पहले के तेज बच्चे थे, मैं उनको तथा करके तेज करता हूँ क्योंकि वो रट करके तेज रहे, इन दोनों बच्चों ने जिनको कि कहा गया कि क्लास में डिस्टर्ब थे, वो दोनों बच्चों ने उस कहानी को समझ के सुना। मतलब उसमें ये है कि लोमड़ी ने गुफा में जाने वाले शेर के चिन्हों को देखा तो उसको वो समझ गए कि हमारे गुफा में शेर
वाला आने वाला नहीं
है। हाँ, मतलब शेर गया हुआ है, उसके चिन्हों को देखा। जो तेज बच्चे थे उन्होंने चिन्हों का उपयोग करते हुए कहा, इसे उन दो बच्चों ने कहा लोमड़ी ने शेर के लात के निशान देखे। मतलब पूरे अपने शब्दों में उन्होंने कहानी सुनाई, मेरे लिए वो ज्यादा प्रसिद्ध होता। उसके बाद एक कोने में बच्चा था, वो दुबका हुआ ऐसा छिपा था, उसको कोई देख नहीं, मतलब उसको कोई न बुला। मैंने उसी कोने वाले बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा तुम आओ। जैसे ही उसको बुलाया, क्योंकि हम इंटरेक्ट कर रहे थे तो आसपास और टीचर शिक्षक की क्लास में आ गए थे, वो सब एक साथ मेरे पास आए कि सर ये बच्चा नहीं बोल पा रहा है। मैंने पूछा क्यों ये बोलता नहीं क्या, ये लगा कि हो सकता है बोलने में प्रॉब्लम है इसके, तो वो सारे शिक्षक आकर मुझे कहे सर ये बच्चा नहीं बोल पाया। मैंने कहा क्यों बोलता नहीं है क्या, नहीं सर बोलता तो है लेकिन बहुत साई नहीं करता है, अपने फ्रेंड तक से बात नहीं करता। हमने कहा भी करेगा, मैं अभी देखिए अभी आप लोगों को कहानी सुनाया। उस बच्चे से मैंने शुरुआत किया और दो तीन छोटे छोटे प्रश्न शुरू किया। जंगल बेटा कौन रहता, उसने बताया जंगल में शेर रहता। उसे शिकार पे क्यों निकला, उसने बताया शेर को भूख लगी थी। उसके बाद उसने क्या किया, शुरुआत में क्लोज एंडेड प्रश्न किया, फिर ओपन एंडेड प्रश्न किया, उसके बाद वो धीरे धीरे बच्चा प्रो पकड़ लिया। उसके बाद उसी बच्चे ने पूरी कहानी सुनाई, उसी बच्चे ने पूरी कहानी सुनाई। ये उदाहरण मैं देता हूँ, मतलब देखिए जिस बच्चे को आप ये मान रहे हो तो फ्रेंड्स तक से नहीं बोलता, और आप ये सोच लेते हो इसलिए वो बिल्कुल नहीं बोलता। आपने उसके पहले प्रति आपने एक धारणा बना ली कि वो बोलेगा, उसको आप अवसर ही नहीं दे रहे। एक मटका विद्यालय दुनिया है, प्राथमिक विद्यालय सेवापुरी में है, सेवापुरी के नीति आयोग ने बोल दिया और सारे एनजीओ और सारे संस्थाएं जो भी है पूरा पुकट प्रयास सेवापुरी करता है, मतलब सेवापुरी के सारे विद्यालय स्मार्ट क्लास हो गए, मतलब इतनी फंडिंग वहां पे जा रही है, मतलब कुछ घर मेंटेन ना हो कुछ बेटर। देखिए टीचिंग लर्निंग तो टीचर को ही करना है, और आप किसी चीज को ओवर कर दोगे तो भी बर्डन हो जाता है। एक एनजीओ आता है एक बार दूध दे जाता है, दूसरा एनजीओ आया दूसरा बार दूध दे गया, तीसरा एनजीओ आया तीसरा बार दूध दे गया, सब और भूख ही दे रहे हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को उनको बेहतर बनाने के लिए किसी का इनपुट नहीं है या कम इनपुट है, या हम आगे कुछ सिखा गए दूसरा आ जाएगा नहीं अब ये करो तीसरा आया अब ये करो, तो इससे भी हमारे टीचर परेशान है। और कई बार हम हमारी तैयारी बहुत अच्छी है तो हम एनजीओ को सीधे ऐसे दे देते हैं कि अच्छा चलो आपको, जैसे अभी एक से तीन तक की उनकी तैयारी कुछ है, मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ उसमें, वो एलएलएफ काम कर रहा है तो फिर भी अब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सर ये अभी लैकिंग हर जगह है, कुछ चाइल्ड फ्रेंडली अभी हमारे टूल्स नहीं है, इससे बहुत संतुष्ट नहीं है बच्चे को, मतलब जब तक बच्चे को हम ऐसी टीचिंग ना दें कि बच्चे को मजा आ रहे हैं, बच्चा खेलते हुए सीख रहा हो, इसी से अभी बहुत कम लोग सेंसिटिव हो पाते हैं। मैंने इसका एक्सपीरियंस यहीं पर, मैंने पूरे लॉकडाउन पीरियड में मैंने टीचर्स के लिए इंटर एक्टिव क्लास चलाया, मतलब हमारा डायरेक्ट फैकल्टी यहीं पर बैठे थे, तो यहाँ हमारा एलईडी टीवी भी लग नहीं पाया है, अभी यही वो जो तार लगा हुआ उसी से इंस्टॉल हो जाएगा, ये एक दो दिन में कराई होगा, तो यहीं एलईडी टीवी से क्लास चलती थी। तो हर टीचर को हमारे ड्यूटी दे रखा था कि आप कम से कम डेढ़ घंटे दो घंटे आप जो आप जानते हैं वो दूसरे टीचर्स को हमारे फैकल्टी को बताएं, तो इस तरह से मतलब लर्निंग को हम इंटरचेंज कर रहे थे उस दौरान उर्दू टीचर को हमने कहा कि आप उर्दू सीखो, वो पूरा अपना तैयारी के हिसाब से वो उर्दू की वर्णमाला देकर अरे उर्दू लेक्चर स्टूडेंट बल्कि नहीं है तो संस्कृत की बल्कि नहीं है इसके लिए पूर्ण मुकदमा तक हो गया कि मतलब संस्कृत के बच्चे सीखने वाले हैं उसके लिए भी टीचर नहीं और जो नहीं सीखने वाला है उसके लिए टीचर
ये दो है तीन है
फिर जैसे वो पढ़ते थे कि ये अंक है, मैं और बच्चों से कहा कि जरा इतनी उंगलियां दिखाओ, तो सारे बच्चे वो एकदम करेक्ट उंगली दिखा रहे थे। करते करते मैं बच्चों के रिस्पॉन्स से बहुत खुश था, तब तक एक नंबर आया 12, एक लिपस्टिक में डबल डिजिट में क्यों लिखी लिखा हुआ था 12 नंबर लिखा हुआ था। अब मैं जिस ट्रेंड पे चल रहा था कि जितनी उंगली जितना नंबर लिखा हो उतना दिखाओ, मुझे लगा कि अभी बच्चे कैसे दिखाएंगे, लेकिन बच्चे फ्लो पकड़ चुके थे। जैसे ही वो 12 आया बच्चों ने ऐसे दिखाया और फिर गए, मतलब एक बार दोनों हथेलियों को दिखाया और फिर दो उंगलियों को दिखाया। अब ये देखिए चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि बच्चे पूरे खेल खेल रहे हैं और सीख रहे हैं, और ये एनवायरनमेंट के टीचर ने डेवलप किया था, तो मैं क्यों जाकर वहां एसेस किया। लेकिन शायद वहीं ने ब्लैक बोर्ड पर के लिखकर लिखा था वो चाइल्ड फ्रेंडली नहीं होता है, मैंने वो स्टिक उड़ा दिया और फिर बच्चे कुछ कैच किए और फिर एक बच्चा आ रहा उसको पढ़ रहा फिर और बच्चे उंगलियों से बता रहे, एक जॉयफुल एनवायरनमेंट डेवलप होता है। हम लोग उस दिशा में जब तक प्रयास नहीं करते हैं तब तक हम टीचिंग लर्निंग को बोझे बनाए हुए हैं, और ये सारे प्रयास के बावजूद अभी हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे एलएलएफ एफएलएन वाले हैं भी, अभी मुझे ये कष्टदायक लगता है, वहां अक्षर से शब्द की पूरी एक चार्ट लगती है, यही है ना 22 सप्ताह के कार्यक्रम में हमारे साथ जी, तो एक अक्षर लिखा होता है बीच में सेंट्रल और उससे जुड़े हुए कई शब्द लिखे होते हैं, उन शब्दों में आधे शब्द वो होते हैं जिसका इमेज बच्चा नहीं बना सकता, उन शब्दों को पढ़ा जाता है उनके सामने, लेकिन बच्चों को या तो आप एक्सप्लेन करोगे वो अर्थ भी हो सकता है ना समझ पा रहा हो, तो उसके दिमाग में इमेज नहीं बनती है। तो छोटे बच्चे के लिए उन शब्दों को सीखना समझ पाना एक कठिन होता है, फिर यहीं पे हमारी क्रिया बोझिल हो जाती है। तीन चार पिछली मीटिंग में मेरे दिमाग में आया कि यदि हम लोग थोड़ा भी चाइल्ड फ्रेंडली सेंसिटिव होते तो हमारी किताब का नाम कलरव नहीं होता, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम कलरव हिंदी। अब कलरव का अर्थ बच्चा क्या समझेगा, क्या हम समझाएंगे उसको, मतलब हम अपनी संतुष्टि के लिए लिख रहे हैं कि अच्छा ये बड़ा अच्छा शब्द लिख दिया कलरव, बच्चा भी पढ़ लिया कलरव, लेकिन मतलब हम समझा भी नहीं, तो समझाने का प्रयास ही नहीं करते। एक जो हम जब इस एक्सपीरियंस को शेयर किए पिछली मीटिंग में, तो एक दो टीचर ने कहा कि सर हमने पूछा था कोई नहीं बता पाया था, हमने कहा आप ये भी आश्चर्य की बात है कि आपने पूछ लिया, जल्दी लोग पूछते भी नहीं, वो मान लेते हैं कि तो किताब का नाम है उससे कोई लेना देना नहीं, हाँ इस पाठ पे आओ। एक कक्षा सात में पाठ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उद्बोधन, राइट बस्ती में था, तो मैंने स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बनवा रखे, बगल में कस्तूरबा था तो उनसे कहा था कि जा पढ़ाइए, मतलब लेसन प्लान बनाइए, पूरा सब्जेक्ट इस तरह से ग्रुप था, लेसन प्लान बनाइए फिर प्लान के हिसाब से जाके क्लास में पढ़ाइए, और टीचर्स की ड्यूटी लगा रखी थी सब्जेक्ट वाइज, जा जाकर उसको इवैल्यूएट करिए और उनका फिर फीडबैक उनको दीजिए, ऐसी टीचिंग चल रही थी। एक दिन जब थोड़ा खाली था हिंदी की क्लास में चल रही, सेवंथ में कोई चल रहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उद्बोधन, स्टूडेंट ने और चूंकि सब लगभग उसमें ज्यादातर स्टूडेंट या तो ग्रेजुएट हिंदी से थे उसमें कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भी हिंदी से, उसमें एक लड़की पढ़ा रही थी बाकी लोग उनके सब प्लान में ग्रुप तैयार किए थे मटेरियल, उस बच्ची ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक चित्र बनाया था टीएल एम के नाम के थे और कोई टीएल एम नहीं था, वो चित्र बना के संतुष्ट थे कि मैंने टीएल एम बना दिया। उसके बाद उसने शुरुआत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी ऐसे चर्चा की, एक वातावरण सीजन से समझ, उसके बाद अब समझ भी रहा था तेजी से और टाइम लिमिट सब कुछ उन्हीं को प्लान करना था, उसने पूरा पाठ एक बार फिर से पढ़ा, शुरू आगे पहले तो जीवनी सुनाने के बाद पूरा पाठ पढ़ा, वो बच्चे सुने फिर बच्चों को एक दो बच्चों को खड़ा किया कि अच्छा चलो अनुकरण ये आदर्श वाचन था जो पूरा पाठ पढ़ा, फिर एक बच्चे को खड़ा किया अनुकरण वाचन में, एक पैराग्राफ पढ़ाया वो बच्चे की स्पीड से हो करते करते उसके सिर्फ 10 मिनट समय बचा केवल एक पैराग्राफ उनको उठा के वह इसी घंटी में मुझे अपना पूरा पाठ खत्म करना है, तो प्रश्न पूछना शुरू किया, वो प्रश्न संयोग से जो किताब में थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से संबंधित, तो सभी बच्चों ने उसका उत्तर भी दे दिया, वो संतुष्ट हो गया कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, मैंने उस याद को उठा दिया था, मैंने with 125 out of 100 मतलब कि 25 अंक भी हमारे सामने टीचिंग बहुत खराब और सारे बच्चे सब कुछ की सर उन्होंने क्या गलती किया सारे सिद्धांतों का तो पालन किया आदर्श वाचन भी किया उच्चारण वाचन भी किया प्रश्न भी पूछा बच्चों ने उत्तर भी दे दिया पर भी आप इतना खराब इनको कहते हैं मैंने क्लास लिया और उसका यही होता है कि देखिए आपकी जगह पे मैं होता तो पहले तुम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उद्बोधन की बात हो रही है तो कम से कम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताता और उद्बोधन का अर्थ तो कम से कम बताता उद्बोधन का मतलब क्या होता है पूरी क्लास खत्म हो गई उद्बोधन का तात्पर्य भी आप समझाने की जरूरत नहीं महसूस किए और अंत में फिर जो उद्बोधन का उन्होंने भाषण दिया था उस भाषण की समरी पूरी एक बार बताता अब तक किताब खोले उसके बाद एक पैराग्राफ पढ़ता बच्चे से केवल एक लाइन पढ़वाता उस केवल एक पैराग्राफ के अर्थ को एक्सप्लेन करता उस एक पैराग्राफ के से संबंधित प्रश्न पूछ करके बच्चों के लर्निंग आउटकम निकालता उस एक पैराग्राफ के ही शब्दों के अर्थ और उनसे वाक्य जो भी दक्षताओं सारे केवल एक पैराग्राफ के अब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत है सिद्धांत में तो हम बता देते हैं कि आदर्श वाचन करिए अनुकरण वाचन करिए ये बताइए वो बताइए सिद्धांत और प्रश्न भी संजो से देखिए उस कक्षा सात के पाठ पुस्तक में उद्बोधन तो दिया हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भाषण और प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से संबंधित उस प्रश्नों को भी उस पाठ के कंटेंट से रिलेट नहीं किया प्रश्न कई बार हमारे स्टूडेंट उठाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई वो उन पाठ को और प्रश्नों को भी तो आप ही जैसे कुछ लोगों ने जाकर के लिख रखा है ना उसका कोई ऐसा एक्सपर्ट तो आया नहीं है वो सब दोष हम लोगों में भी है अभी चूंकि हम जब तक उससे बेहतर नहीं कर पा रहे तब तक हमारी मजबूरी है उसी को डाल कर जैसे वो 200 शब्द चुनने के लिए मैं टीचर्स को दिया तो उनको 4 घंटे लगे जिन 200 शब्दों पर कहानी में बनवा रहा हूं उन 200 शब्दों को ही चुनने में 4 घंटे लगे लेकिन वो नीड है उस दिशा में अभी हम सोच नहीं पा रहे एफएलएन में जितनी भी 22 सप्ताह का कार्यक्रम है आप किसी शब्द को ले लीजिए तो ऐसे शब्द हैं जो बच्चों के लिए बच्चे उनसे अपरिचित बच्चों के लिए वो बोझिल शब्द है से बनवा दिए जाते हैं कुछ 4-5 शब्द तो परिचित होते हैं बाकी शब्द उनके लिए बिल्कुल अपरिचित होते हैं अब वो शब्द उन शब्दों में बच्चों का कहां से इंटरेस्ट आएगा तो इस दिशा में अभी हम लोग को बहुत काम करने की जरूरत है ये तो मैं अभी भाषा की बात कर रहा हूँ हर क्षेत्र में यही स्थिति है कि अभी हम अपने को चाइल्ड फ्रेंडली नहीं बना पाए हम अपने थ्योरी के हिसाब से चलते हैं कि हमें ये सिखा देना है और इतना जल्दी सिखा देना है असेसमेंट आज तक हम जब बनाते हैं तो इस रूप में बनाते हैं जैसे वो हमारी परीक्षा हो रही है परीक्षा का एकदम एक भय तुरंत इन्वॉल्व हो जाता है आज से 6 महीने पहले की बात है एलएलएफ वालों ने सेवापुरी में टेस्ट लिया और टेस्ट लेकर के जो रिजल्ट बनाया उसमें मुश्किल से 5-7% बच्चे कुछ ठीक दिख रहे थे वो रिजल्ट उन्होंने डायरेक्टर साहब को शेयर किया शायद एक साल पूरा नहीं हुआ डायरेक्टर साहब सभी जितने शेयर किया और जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने मुझसे फोन किया कि मैंने मेरे पास रिपोर्ट आई और रिपोर्ट को देख के रोना मैंने कहा सर रिपोर्ट जरा मुझे लिखी मैं भी देखूँ वो आया को फिर मैंने एलएलएफ वालों को बुलाया मैंने कहा जरा आपने टूल्स लाई जिनसे आपने असेसमेंट किया तो टूल्स एकदम उनको मैं खराब कर सकता हूँ मतलब बच्चों के लिए किसी भी रूप में वो चाइल्ड फ्रेंडली टूल्स नहीं थे हमने कहा इसमें तो आप असेसमेंट करोगे तो जिस बच्चे को आता भी होगा वो नहीं रिस्पॉन्स कर पाएगा आप क्या असेसमेंट कर रहे उसमें संजोग से वो पंचायत वाला चुनाव चल रहा मैं उसमें भी ट्रेनर रहता हूँ अभी कब कौन आ गया है सर वो ट्रेनिंग शुरू होने वाली है तो उसका ट्रेनिंग मटेरियल भी आप मैं ही तैयार करता हूँ उसमें वहाँ व्यस्त था उन्होंने पूछा सर हम चाहते हैं एक नया पेपर बनवाना मैं दूसरे असेसमेंट के लिए मैं लगभग 3-4 घंटे इन्वॉल्व होकर के पेपर उनका बनवाया पेपर ऐसा बनाओ ना कि बच्चे को पता ना लगे कि वो परीक्षा दे रहा है वो एंजॉय कर रहा होगा आप उसको एसेस कर दो कम से कम उसको कुछ तो अच्छा लगे आप ऐसी चीजें कर देते क्लास हो गई, तुम लोग क्लास रूम देख ले, आप दोनों लोग इधर सर को ले जाकर के क्लास में बैठ पाएंगे, दोनों लोग क्लास मतलब चार दोनों मतलब क्लास में टीचिंग करते हैं, प्रैक्टिस को आप लोग आप जाकर आई को दिलवा दे सर आई को
और कुछ कॉन्सेप्ट फॉर्म्स हैं तो वो डिस्कस करते हैं
इससे बनवाना है
जो जो
जिससे जिससे जब चाहे कहीं भी आप कभी भी इसी रूप में फोटो ले सकते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है ठीक है आप कहीं का भी फोटो लेना चाहे कहीं का रिकॉर्डिंग करना चाहे वो हमारी तरफ से पूरी अनुमति है कल के वाले से सामान्य इवेंट क्या रखा
गया
मतलब इन लोगों ने हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा है कि सबसे सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है 10 दिन बाद 19 से जो ये लोग रिवीजन के पर्पस से उन दोनों सेमेस्टर के बच्चों को एक साथ बैठा करके और ये लोग बीच में 19 से कंबाइन करके क्वेश्चन आंसर के टाइप का कुछ करना चाह रहे हैं सबसे बोल करके क्वेश्चन बनवा लीजिएगा जिससे कि उस हिसाब से बाकी लोगों को परिचय करा दूं आप सब प्रोफेसर इंदम बोस जी हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से और बाकी 3 लोग आपके एमएड के स्टूडेंट्स हैं और ये आप लोग डाइट वाराणसी की स्टडी करने आए हुए हैं और इसके साथ साथ हमारे फील्ड इंटरेक्शन के लिए हमारे फील्ड के भी कुछ विद्यालयों के स्टडी करेंगे और आप लोग की स्टडी पूरे सप्ताह भर चलेगी मतलब कल आप लोग आए थे और शनिवार तक ये चलेगी
तो हम लोग यूपी में 11 डाइट
में वाराणसी है लोग हमारे पूरी कार्यशैली को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक हम लोग के लिए भी बड़ा बेहतर अनुभव होगा कि हमको कोई थर्ड पार्टी देख रही है कि हाँ कैसे कैसे क्या हम कर चलते हैं तो आप लोग आपका इंस्टीट्यूट अपने आप में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है और हमारा डाइट घोषित हुआ है तो हमें आपसे मार्गदर्शन मिलेगा कि हम कैसे और उस एक्सेलेंस की तरफ बढ़ सकें थैंक यू सर
ऑफिस से मुझे 20 शीट्स चाहिए थे सर वो कंसेंट फॉर्म है वो सभी टीचर्स के लिए और प्रिंसिपल सर के लिए सर इसकी 20 कॉपीज और इसकी 20 कॉपीज
सेट कर दीजिए
ये सब बहुत मतलब ऐसे अलग अलग है एक साइड हो जाएगा तो
हाँ
ए सत्यम
आगे पीछे कर
आगे पीछे होगा अच्छा था तो वो कुछ क्लासरूम
जो
दोनों क्लास सर एक ही साथ देखेंगे ये
है नीचे क्लास से क्लास तक चल रही
सर एक्चुअली एक टीम जाएगी दूसरी जगह और दूसरी टीम जाएगी दूसरी जगह दो टीम जाएगी
सर दो दो में चले जाते
हैं यस सर दो दो
दो दो
हाँ सर इधर कहाँ जाना होगा पहले आपका तो हो गया क्लासों में तो जिन क्लासेज हमें करी है सब पढ़ा है रीडिंग से याद है पहली बार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक कहाँ हुआ कुछ नहीं हुआ बस बोलते रह गए रीडिंग्स कराए बहुत सारी मैंने करी हर वीक रीडिंग किन लोग कहाँ
हाँ आप लोग कहाँ से रहने वाले
ऐसे मतलब मेरा नेटिव प्लेस तो मालदा टाउन है
मालदा
जानते
हैं